कुछ जरूरी बातें, क्योंकि हम सब एक दूसरे की खैर ख्वाही रखते हैं, तो हमारे कल्चर में बाज दफा किसी के मरने की खबर सुन के क्या करना है ये नहीं पता। इसको शरीयत में ताज़ियत कहते हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में गाइडलाइन दे दूं आपको, क्योंकि आप ही में से कुछ साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि बाज दफा खास तौर पे बैक होम जब पाकिस्तान में या गांव में ऐसा कोई वाकया आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा, यानी वो ही टिपिकल तरीके से लोग घरों में जमा होते हैं और कुछ करते हैं। फायदे की खातिर इस मौजू पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जब भी कोई किसी के मरने की खबर हमें मिले तो इस्लाम क्या हमें उस बारे में कोई गाइडलाइन देता है, तो बिल्कुल गाइडलाइन देता है। इसको अरबी जुबान में ताज़ियत कहते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा लफ्ज़ बदलना चाहूँगी जो हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है। मैंने खुद अपनी फैमिली के लोगों को कई दफ़ा टोक टोक के इससे रोका है, और वो क्या है कि कहाँ जा रहे हैं, अफसोस पे जा रहे हैं या अफसोस करने जा रहे हैं। इवॉइड करें इस लफ्ज़ से, क्योंकि अल्लाह के किसी फैसले पे मुझे आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। अफसोस का तो ये मतलब है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जब हम ये कहते हैं कि हर बात अल्लाह का फैसला है, बल्कि लफ्ज़ बस बदलें, कोई हलाल हराम की बात नहीं है, सिर्फ एक अपनी सोच के लिए सीधा रखिए, तो इसको ताज़ियत कहते हैं। यानी ताज़ियत क्या होता है कि जब कोई फौत हो तो उसके बाकी जो घर वाले हैं उनको सब्र की तलकीन करना बहुत अजर है। पहली बात तो इस पे आपने लिए ये नोट करें कि ताज़ियत के लिए जाया जा सकता है, जाना चाहिए। दूसरी बात नोट करें कि अमूमन हम ताज़ियत के लिए ये सोच रख के जाते हैं क्योंकि वो भी आए थे हमारे घर, क्योंकि हमारा उनके साथ मरने जीने का आना जाना है। यानी ना भी कहें मुंह से, लेकिन आमतौर पर लोग उनके घरों में जाते हैं जो हमारे घरों में आते हैं, तो ये इसलिए नहीं करना, बल्कि ताज़ियत करना इबादत है। हदीस सुनेंगे तो आपकी फिर सोच बदल जाएगी इंशाल्लाह। जाते तो हैं ही हैं, जाना भी होता है। ये सोच के ना गए तो लोग कहेंगे कि नहीं आए, खानदान है, ये है, वो है, सब चले, ये करें, और फिर जाके घर वालों की नज़रों में ज़रूर आना कि जी हम आए थे, तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। आज से आपने इसको सुन्नत समझ के जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत आती है अनस बिन मालिक से कि जिसने अपने मोमिन भाई की मुसीबत में इससे ताज़ियत की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको सब्ज़ हुल्ला पहनाएंगे, सब्ज़ रंग के कपड़े पहनाएंगे, जिस पर क़यामत के दिन रश किया जाएगा। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा युखबरू, उसको युखबर कहा गया कि उसको हुल्ला पहनाया जाएगा, युखबर से क्या मुराद है? तो आपने फरमाया युगबत। युगबत क्या है? गिबता से, तो ऐसे आता है कि जिस पर रश किया जाए। तो क्या पता चला कि किसी की भी, हम अमूमन अपनों के जाते हैं, नहीं अगर आप इस शहर में रहते हैं आपको मैसेज मिलता है मस्जिद में किसी का जनाजा है या कोई फौत हुआ है, या ऐसे ही कोई बहन कहती है फलां आज फौत हो गई है, तो अगर आप जा सके तो जरूर जाएं, ये अजर का मामला है। फिर उसके बाद जब जाएं तो क्या करें? जब जाएं तो पहली बात है नीयत ठीक करें, फिर उसके बाद जब जाएं तो वहां जाकर घर वालों के सामने भी और खुद से भी मैयत के लिए दुआ करें। दुआ करनी चाहिए उस वक्त, जाके भलाई की बातें करें, घर वालों को सब्र की तलकीन भी करें, और मसनून अल्फाज जो मैंने खुद देखे हैं बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसे वक्तों में, हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत लफ्ज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बेटी के बच्चे की वफात पे बोले थे कि इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा वलहू मा आता वकुल्ल शयइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा फल तस्बिर वल तहतसिब। बेशक अल्लाह ही का था जो वो ले गया, क्योंकि हर चीज़ जो हमारे पास अल्लाह ही के हुक्म से है, मतलब ये कि अब जो हैं वो भी जाएंगी, तो लिहाजा सब्र करो और इस बात पर अजर की उम्मीद रखो। इसको ताज़ियत की दुआ कहते हैं। मैंने देखा लोगों को नहीं आती, पता नहीं आपको तो आती ही होगी, नहीं आती तो याद कीजिए, मसनून दुआ है, किताबों में मिलेगी तसीयत के नाम पे। फिर दूसरी बात है कि मरने वाले के हक में दुआ करें, क्योंकि मरने वाले को आपकी मेरी दुआ ही फायदा देती है। उस वक्त वहां जाकर उनके लिए, बाज लोग कहते हैं क्या करें, आप जाइए। अब ये जो जाके जानबूझ के गले मिलना, लोगों को रुलाना, ये पसंदीदा अमल नहीं है। और यकीन करें ये मैंने पंजाबी कल्चर्स में देखा है। मैं कराची में, मेरा इत्तफाक हुआ है काफी अरसा में रहने का, तो वहाँ जो इर्द गिर्द हमारे लोग थे वो देहली बरादरी कहलाती थी, मैंने उनसे ज्यादा सब्र और तहम्मुल वाले लोग नहीं देखे। मैयत वाले घर में पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, और आप जाएं अंदर और जिस औरत को खुट्टा खुट्टा और ऐसे अंदर अपना दर्द रोकता हुआ देखें, समझ जाएं कि वो मैयत की कोई करीबी या बीवी है या बहन है या माँ है। किसी को जरूरत नहीं, हमारे तो जाके पहले बुध होया की, फिर हर एक पूछता है, फिर कहते मुझे कहानी सुनो, फिर की होया, फिर क्यों, फिर हर बंदे ने करीबियों से होता है, तो वो कैसे कर, जो नए लोग हैं ना, जैसे हम जैसे नए लोग अगर चले जाए और कोई पूछने लग जाए बैठ के क्या हुआ था मरने वाले को, तो क्या कहते मतलब क्या कि इसके सामने नहीं बातें करो। किसी ने अगर दिल में तो जासूस रख के पूछना ना, दूसरे कमरे में जाते हैं फिर वहां किसी से आपस में जो जैसे गैर लोग होते हैं ना वो पूछ लें बता लें, जिसका कोई गया उसके सामने नहीं पूछते। क्यों? कहते हैं वो दुखी हुई है, उनका दिल दुखेगा, उसको भूलेगा नहीं, उसको सुकून चाहिए। नहीं रोते, इतना सुकून इतना सब्र देखा। जो आता है वहां बैठ के वो मैयत की बख्शिश के जो कार्ड हैं, दुआएं हैं, आपको भी मिल जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल पे भी होती हैं, अब तो इतनी आम है, व्हाट्सएप पे आपको भेजी जा सकती हैं, आपके मेरे हर एक के पास वो होने चाहिए हर वक्त, वो कार्ड वो दुआएं रखी होंगी, जो जाता है अपने तौर पे वो दुआएं उठ के पढ़े। और हमें ये दुआएं जुबानी आनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि कल को मेरे ऊपर पढ़े तो मुझे भी तो आज दूसरों पे पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह मग़फिर लहू व रहमहू वाफ़ीही वाफ़वनहू वक्रिम नुज़ुलहू वस्से मुदखलहू वब्दिल दारन खैर मिन दारहू वअहलन खैर मिन अहलहू वज़ौजन खैर मिन ज़ौजहू वअदख़िलहुल जन्ना वअईज़हू मिन अज़ाबिन नार। ये दुआएं पूरी मैंने इधर इसी हॉल में कई दफ़ा हमने कराई हैं, रिकॉर्डिंग्स में मौजूद हैं, जनाजे के मसाइल एक बुक है उसके अंदर भी है, अलग से दो में भी कराई हैं, तो आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, बुक्स भी लें, खुद भी पढ़ें। लेकिन ये कि बैठे, अब किसी को नहीं आती दुआ तो क्या करे, बैठ के दुआ करे, अल्लाह उसको बख्श दे, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर, अपने लिए भी और उनके लिए भी दुआएं करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे फायदा होगा कि कोई फालतू बातें ही नहीं होगी। बाज लोग कहते हैं अच्छा जी हम जाके बैठ के कुछ पढ़ लेते हैं, कोई कुरान पढ़ लेते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्योंकि इतने लोग आए हैं बैठे हैं क्या करें, ठीक है, तो उसके क्यों ना पढ़ें। 3 दिन तक हर दुआ पे फरिश्ते आमीन कहते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लम ने अबू सलमा जब फौत हुए थे तो उनके हक में जो दुआ की थी वो हदीस की किताबों में हमें मिलती है, जिसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे, उनके दर्जे बुलंद कर दे अब वहाँ आखरत में, और हिदायत याफ्ता लोगों में इनका दर्जा बुलंद कर, और उनके जो पीछे लोग हैं उनकी हिफाजत कर दे, और अल्लाह हमें और सब मरने वालों को माफ़ कर दे, उनकी कब्र को कुशादा कर दे और नूर से भर दे। तो इस तरह की दुआएं हदीस में मिलती हैं, वो करें। उसके बाद आप देखिए कि ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। अब ये मुझे पता है बातें आपको बुरी लगेंगी, कल्चरली कोई मर जाए एक तो उसकी कमर वैसे सदमे से टूटी होती है, लेकिन जो दूसरी मेहमानदारियां और सर्दियों में बिस्तरों के इंतजाम करने और खाने, और मुझे तो वो बात ही नहीं भूलती अपनी किसी अजीज की के अचानक डेथ थी उनके शौहर की, और बच्चे अभी बीच की उम्र के हैं ना, कमाने वाले ना बहुत छोटे, और वो इतनी सडन डेथ थी ड्यूरिंग ट्रेवलिंग के, उनको हार्ट फेल हुआ था। लेकिन उसके बाद रिश्तेदार आके घर में ऐसे आके बैठे, और रिश्तेदार खानों के वक्त में पूरे खाने भी खा रहे हैं, रिश्ते नाते भी जोड़ रहे हैं, वहाँ अगली प्लानिंग से भी हो रही है, तो वो कहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा तो कहता ये सब जाए, मैं अपने मियाँ को सोचना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे मैं उनके साथ हम रहते थे बच्चे, हम अपनी नेचुरल लाइफ में आए। 10 दिन का खर्चा, आज से ही कितने साल पहले की बात है, बाद में ऐसे बात हुई, सिर्फ नाश्ते पानी आने में उस दौर में लाखों में आए थे, सिर्फ घर में नाश्ता जो आया इतने दिन मेहमानों की वजह से। तो दुख उसको ही होता है जिसको जितना होता है। 3 दिन से जायद किसी के घर में सोग की नीयत से या मरने की नीयत से जाना ये जायज नहीं। सिर्फ एक औरत जिसका शौहर फौत होता है तो वो 4 माह 10 दिन तक सोग कर सकती है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों में हबीबा आपकी जौजा थी तो वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी से ये बात मैंने खुद सुनी है कि अल्लाह और जौम आखरत पर जो औरत ईमान लाती है उसको किसी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना सिवाय शौहर पे जो कि 4 माह और 10 दिन है। और वो अपने सोग को खत्म करने के लिए इतर मंगा के लगाती हैं। अभी ये मैंने फ्रांस में कोर्स करवाया है मुश्किलात और मुसीबतों पर क्या करें, तो उसमें सारी हदीसें हमने पढ़ी हैं कि किस तरह से खुशबू लगाई या इतर लगाया और लगा के कहती है मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन ये लगाकर मैं अपने नबी की इस हदीस पे अमल कर रही हूँ कि मेरे शोक को खत्म करना है। दूसरी बीवी उनके बाप का इंतकाल हुआ तो रंग मगा के चेहरे पे लगा रही हैं, कहती हैं किसका दिल कर रहा होगा लगाने को, शोहर पहले ही नहीं थे, बाप भी बहुत हो गए, लेकिन ये रंग चेहरे पे इसलिए लगा रही हूँ कि आज से मुझे कोई शोक में ना कहे। तो ये बड़े हौसले की बातें, हमारे कल्चर में ईद नहीं करनी, अब शादियां कैंसिल हो रही हैं, ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए। जो हजरत जाफर की वफात हुई आपने सिर्फ 3 दिन तक उनके घर में लोगों को आने जाने की इजाजत दी, जब 3 दिन गुजर गए आपने फरमाया आज के बाद मेरे भाई का सोग ना किया जाए। आप उसको भाई क्यों कहते थे, चचा सत भाई थे, हजरत अली के छोटे भाई थे। तो ये अबू दाऊद और निसाई की रिवायत है। इसी तरह मोहम्मद बिन सीरी कहते हैं कि उम्मे अतिया का बेटा फौत हो गया, 3रे दिन उन्होंने जर्द खुशबू मंगाई और इस्तेमाल की, और फिर वही बात कही कि हमें इजाजत नहीं है कि हम 3 दिन से जायद किसी पर सोग करें शौहर के सिवा। ये बुखारी की रिवायत है। फिर उसके बाद है जिनके घर में मैयत हुई है उनके घर खाना पकवा के भेजना सुन्नत है, ये भी जरा सी बात समझने की है, जब जाफर की वफात हुई, अब्दुल्ला बिन जाफर कहते हैं उनके बेटे, कि अल्लाह के नबी ने उनके घर वालों के लिए खाना तैयार करवाया और फरमाया इन लोगों पर ऐसी मुसीबत आई है कि ऐसे मौके में वो खाना नहीं पका सकते, तो लिहाजा तो वो पकाया जाए, इब्ने माजा की रिवायत है। अच्छा, अब यहाँ एक छोटी सी जो हमारे फीस माना कल्चर की बात है, घर वाले तो शायद नहीं पकाते, कोई रिश्तेदारी पकाता है ना, मामू ने बना दिया, और बाज़ दफ़ा तो मैंने सुना है बहुओं के मैके से आता है, फिर मुकाबले होते हैं, पहली बहू छोटी बहू बीच की आई, फिर किसके घर से अच्छा आया किसका बुरा आया। और सबसे ज्यादा जो चीज़ इस वक्त हमारी बेहिसी है कि शादी के खाने में और मैयत के खाने में फ़र्क नहीं रहा, हम इतना खाने के लिए हो गए, सादा सा खाना कोई एक रिश्तेदार अगर पकाए, किन के लिए, जो लोग मौजूद है, इट्स ओके, लेकिन सबको रोकना और बुलाना, और जो तो शहर में रहते हैं उनके लिए जायज़ भी नहीं है, घर तक के खाइए, क्योंकि ये कोई वक्त थोड़ी है, खाने की बात नहीं होती, लेकिन उस वक्त वो माहौल ही बदला होता है, देखिए ना खाने के दौरान भी बातें चीज़ होती है, तो थोड़ा बहुत खाना दूसरे बनाएं, ना कि हम जाके खाएं। अब होता क्या है कि वो उसको पूरी शादी का खाना पकाना पड़ता है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और खा रहे हैं, तो ये उस पकाने वाले पे जाती, घर वालों के लिए पकाना चाहिए, ना कि बहुत सारे रिश्तेदार, इल्ला ये कि जो बाहर से आए हैं, दूसरे शहर से आए हैं। अब आप एक गाँव में, मिसाल है पाकिस्तान में, तो गाँव के लोगों को मैयत वाले घर में नहीं बैठना चाहिए खाने के लिए, ये रस्म तोड़ें, आप जाएं घर में कहें, कोई दूसरे शहर से सुन के आए तो वो तो एक और बात है, एक मेहमान नवाजी है, लेकिन रोक रोक के, एक सिस्टर कह रही कि फिर जब जाएं और सुबह 10 बजे खाना शुरू हो जाता है, देगे आ रही हैं पकनी, और अब ऑर्डर करते हैं और खाना पक के आ जाता है, फिर वो जान जान के रोकती हैं, और जिसके मैके या घर से आए थे वो सबको रोक रही होती हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह चीखना, कपड़े फाड़ना, मातम करना, इसकी तो कतन इजाजत नहीं। हदीस में क्या आता है कि खारिश का कुर्ता, खुजली का कुर्ता ऐसी औरत को पहनाया जाएगा जो मैयत पे नौहा करेगी, और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो जाहिलियत की चीजें रहेंगी, कुछ और भी हैं, लेकिन उसमें मैयत पे नौहा करना भी है, और गंदक का पजामा और खुजली का कुर्ता पहनाया जाएगा, ये मुस्लिम की रिवायत है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हज़रत उम्मे अतिया कहती है जब बैत लेते थे अल्लाह के नबी हमसे, यानी जब हमारे इस्लाम की कबूलियत का वक्त आता था, तो उस वक्त बैत लेते थे कि हम अपने मरने वालों पर नौखा नहीं करेंगे, बचना चाहिए, खामोशी से आंसू बहा लीजिए। और इसके अलावा अहले मैयत जो घर वाले हैं उनके लिए कभी एक होता है बड़ा खाना, एक होता है छोटा खाना, ये भी नाम सुने होंगे आपने, इसकी भी इस्लाम में कतन कोई इजाज़त नहीं। सहाबा कहते हैं, हदीस सुन लीजिए अहमद और अबू दाऊद की, कि मैयत दफन करने के बाद अहले मैयत के घर जमा होना और इनके यहाँ खाना खाना, सहाबा इसको नौहा कहते थे, खाना खाने को नौहा समझते थे, कि कट नहीं करना, यानी किसी नाम पे अलग से जमा करना पसंदीदा अमल नहीं है। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत आम है, मसलन जब भी कोई आया है हाथ उठा के मैयत के लिए दुआ करें जी, दुआ करो दुआ करो, या हाथ उठा के सूरह फातिहा पढ़ो पढ़ो, या इसी तरह से घर में एक बंदा बैठ जाता है और जो आ रहा है फिर सारा दिन उसके साथ रहना है, आप देखिए कि एनर्जी भी लगती है, टाइम भी लगता है, तो ये सब की बजाय बहुत बेहतर है कि लोगों को कहा जाए कि आप अपने घर में रहते हुए मैयत की तरफ से दुआ करें, कहीं भी रह के करें। दूसरी बात है, आप उसकी तरफ से सदका करें, आप जैसे बाजी के भाई की डेथ हुई है, तो क्या सिर्फ बाजी उनकी तरफ से सदका कर सकती है, नहीं, हम सब भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे, या खास तौर पे जो करीब के लोग हैं, तो आप उनके लिए कोई सदका जारिया में कोई चीज डालते हैं, कोई कुछ करते हैं कहते हैं, तो मैयत की तरफ से किसी का भी सदका किया जा सकता है, आप उनकी तरफ से दुआ करें, कुछ भी कर सकते हैं, उनके रोजे छुट्टे में रोजे रखवाएं, फर्ज हज था लेकिन कर नहीं सके वो फर्ज हज करवा दीजिए, आप उनकी मौत को एक इबरत समझकर अपने लिए कोई नेकी की नीयत करें वो कीजिए, तो वो अमल की बातें करने की जरूरत है। लेकिन जिसको फूड़ी डालना कहते हैं, 3 दिन से जायद इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं, यानी अगर आज नबी सल्लम मौजूद हों तो 3 दिन से बाद वहां उधर आके लोगों को जमा होने वालों को वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे। और ये सारी हदीस की बातें हैं, मेरी आपकी तो बात ही नहीं है। फिर इसी तरह से ये है कि वफात के बाद पहली ईद का आना या इस तरह के शबरात का आना और उसके ऊपर कुछ से कुछ करना, ये चीज़ें पसंदीदा नहीं है। फिर इसके बाद ये कि मैयत जो है उसके लिए गुस्ल का और कफन दफन का इंतज़ाम मसनून तरीके से करना चाहिए। आप कहते हैं कि मैयत को इतनी ही तकलीफ होती है जितनी जिंदा को होती है, तो कोई किसी का वाक्य सुना रहे थे कि अचानक मौत थी तो पेट फूलना शुरू हो गया, अक्सर फूल जाता है, आपको तो जिस्म का मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्स टूटते हैं, तो ये आम है, तो उसका तरीका कि जल्द से जल्द, यानी ये एक अमल की बात लिखे, जल्द अज जल्द मैयत को दफनाने की कोशिश करें। अब मुझे पता है कि आप साथियों में से बहुत सारे यूज्ड टू हैं इस बात को सुनने के, लेकिन मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी को यहाँ मौत आए तो फिर मैयत को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, जहां जिंदगी में रहे वही रहे। तकलीफ होती है आपको, तक ले जाने के लिए जो मैयत को जाहिर जिस्म में चेंजेस करते हैं तो उसको तकलीफ होती है। आपने फरमाया जिसने जिंदा की हड्डी को तोड़ा ऐसे ही मुर्दा की हड्डी को तोड़ना है। तो वो कोई बता रहा था कि जब मैयत हुई तो उसका पेट फूलने लगा, तो लोगों ने कहा, वो एक पहलवान माशा उसका, कहने का मैं इसका इलाज करता हूँ। लोगों के सब पकड़ के मरे हुए शख्स को बिठा के उसका पेट दबाया, नहीं इसमें गैस भर गई है, और पेट दबाया एक तो उसके मुंह से खून निकल रहा है, कह रहे नहीं ये खून इसके मुंह में अटका हुआ था, उसके जिस्म के अंदर से गंदगी निकली और खूब उसको दबा के और इतनी असीयत के साथ उसके, कहते हैं उसके अंदर से कितना ब्लड निकला। तो वो कह रहा है कि मैंने इसका पेट कर नहीं करने की चाहत। सबसे आसान तरीका ऐस सुन ऐस उसको उसके घर पहुंचाओ। अल्लाह के नबी ने हजरत अली रजी अल्लाह अनहु जो आपके दामाद भी थे, आपके चचा जद भाई भी थे, उनको कहा था कि अली तीन बातों में देर ना करना, फर्ज नमाज जब वक्त हो जाए तो उसकी अदायगी में, और जब कोई फौत हो जाए तो उसके जनाजे में, और तीसरा यह कि जब बच्चा बच्ची जवान हो जाए या साथी जो अकेला रह जाए उसके दूसरे निकाह में, इसमें जल्दी करो। तो आज आप देखें तीनों में देर हो रही है। जी आप
कि अगर कोई अपना प्यारा कहे कि मैं बहुत हो जाऊंगा तो मुझे पाकिस्तान ले जाना, ये मेरी वसीयत है, तो उसमें
जी इस पे कुरान की आयत मौजूद है कि अगर तुम्हें मरने वाले की तरफ से ऐसी वसीयत जिसमें जानिबदारी हो या सही ना हो तो उसको बुरा ना करो, तुम पे कोई गुनाह नहीं है। जिंदगी में कह दें कि ऐसी नसीहतें ना करें, और इसमें तकलीफ होती है, याद रखें कि मैयत के लिए तकलीफ दे। मैं खुद सोचती हूँ, देखिए फिर बुरा ना मानिएगा, हम सारी जिंदगी नॉर्वे में रहे, हम कितने साल बाद, हम पाकिस्तान हर साल जाए ना जाए, तो वो यूज टू है ना हमारे इधर रहने के। अगर हम यहीं दफन हो गए ना, हमारी माँ को याद ही नहीं आएंगे, हम वो कहेंगे वहीं रह रही है, उनके जहन में तसव्वुर ही होगा वो वहीं है। जिसको नहीं देखा होता ना उसका जहन भी नहीं आता, क्यों ऐसा मरा हुआ मुंह लेकर जाए, कोई बड़ा अच्छा मुंह होता है, फिर मुंह दिखाना, फिर उनके तबसरे करना, चेहरे पे नूर है, ये भी याद रखें, मरने के बाद चेहरे पे चमक का आना, नूर का आना, कम साहबा ने कभी कमेंट नहीं किया था। हमारे यहाँ तीन मौकों पर चेहरे की बात जरूर है, बच्चा पैदा हो कैसा है, गोरा है चिट्टा है काला है, शादी दुल्हन कैसी लग रही, और मैयत। हालांकि आप देखें मैयत जब मरती है तो सूज जाती है, तो चेहरा फूल जाता है, सूजन हो गई या चमक आ जाती है, स्ट्रेच होती है बॉडी, तो अब चमक आ गई। अब ये गोरे मरते हैं तो उनके चेहरे चमक रहे होते हैं, तो क्या मैं और आप फतवे देंगे? कोई काला बंदा मर जाए, या कई लोग होते हैं अचानक फौत होते हैं, फौरन बॉडी में ब्लड जमता है, रंग काला हो जाता है, कभी ना दें, कभी इस पर कोई कमेंट ना करें, और उसको ऐस सुन ऐस वहीं दफन कर दें, करीब रखें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका इंजाम अच्छा करे। ये कौन सी हमेशा की जुदाई है, ये वक्ती जुदाई होती है, और दुआ करें अल्लाह हमें अपने घर में मौत दे, हमें वकी में दफन कराए, अल्लाह हमारा जनाजा इमाम काबा से पढ़वाए, हम अपने सारी जिम्मेदारियां और सारा कुछ कर करा के दुनिया से जाएं। तो बहरहाल देखिए माशरे के जो रिवाज और रस्में होती हैं उनको तोड़ना आसान नहीं है। आपको मैंने जितनी भी बातें बताई हैं इसके ऊपर आप गौर करना चाहें, हदीसें मौजूद हैं। मैयत की कुछ नागवार चीज दिखती है, कुछ चेहरे पे, कोई उसके रंग में, कभी उसका जिक्र ना करें। मैं कहती हूँ मरने वालों को तो बस भूल जाएं, उनके बारे में सिर्फ दुआएं करें, कुछ और ना करें। एक सवाल आपके जहनों में आ सकता है, मैं उसका खुद ही जवाब दे देती हूँ कि मरने के बाद क्या रूहें वापस आती हैं? हर जुमेरात को आती हैं या दूसरे पे आती हैं? सूरत अंबिया में कुरान में आयत मौजूद है, अल्लाह ताला कहता है हमने हराम कर दिया किसी भी इंसान पे कि जो दुनिया से गया वो वापस आए। ये तो एक आयत की तफसीर है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस खोल लीजिए, कुरान की आयतें खोल लीजिए, मरने के बाद रूहें दो मुकाम है जहां रहती हैं, इल्लियीन और सिज्जीन। वमा अदरा कमा इल्लियून किताब मरकूम, और फी सिज्जीन वमा अदरा कमा सिज्जीन किताब मरकूम। सिज्जीन सिजन से है, सिजन कहते हैं कैद खाने को, प्रिजन। बदकार फाजिर काफिर उनकी रूहों को जहन्नुम के पास अल्लाह ने जमीन की गहराइयों में कोई दफ्तर कह ले, अपनी समझ के लिए एक दफ्तर है। अब रूहें ऐसे तो नहीं है जैसे फाइलें और वहां रखी हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि उनकी रूहों को अल्लाह ताला पाइल अप कर देते हैं, सुला देते हैं वहां पर। और नेक लोगों की रूहें इल्लियीन में रह गए। शहीद शोहदा, अरसा पहले हमारे सबक में भी आया था, शहीद की रूह को परिंदों की शक्ल में सब्ज परिंदों में डालकर जन्नत में छोड़ दिया जाता है। दैट्स इट। नेक थे हमारे मरने वाले, हमारा गुमान है, अल्लाह ने चाहा, वो इल्लियीन में मजे कर रहे हैं। इल्लियीन के अल्लाह खुद कह रहे हैं वमा अदरा कमा इल्लियीन, तुम्हें क्या पता इल्लियीन क्या, यानी वो तो इतना इंजॉइंग प्लेस है तुम्हारा, वो छोड़ के दुनिया में आएंगे। और रह गए सिज्जीन, तो वो वहां है। अब आप बताइए कि आपने खाना पकाया और वो आए, तो क्या जन्नत की खाने छोड़ के आएंगे? और खुदा ना खास्ता कोई फाजिर है तो जहन्नुम के फरिश्ते आने देंगे? मैं उन्हीं का एक छोटा सा क्लिप देख रही थी, तो उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने शेयर की थी। कहने लगे कि सवाल जवाब था यही जो मैंने आपसे उठाया है कि किसी मरने वाले के ऊपर क्या रूहें आती हैं। तो किसी का वाक्या सुना रहे थे कि मेरे पास एक भाई आए और वो कहने लगे कि मरने वाले की रूहें आती हैं। भाई कैसे आती हैं, कहते पता भी चल जाता है। तो वो अपना वाक्य सुना रहे थे कि एक बुजुर्ग जो थे उनकी वफात हुई, तो उनकी बीवी अभी हयात थी, तो वो बेगम जो थी, अम्मा जी थी, उनका पूरा अकीदा था कि मरने वाले की रूहें आती हैं। खैर क्या हुआ कि उनके मरने के बाद शायद पहली जुमेरात थी, क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि ना इतने सारे रिश्तेदार जमा हुए थे, तो ऐसे एकदम ना घर में तितली आई। तो जू ही तितली आई तो अम्मा जी ने शोर मचा दिया, छ आए हुए आए हुए। अल्लाह का हुक्म, देखिए वो तितली आके उसी बेड पे बैठी जिस पे वो फौत हुए थे। तो कहने लगी देखा अपने बेड पे बैठे हैं। अब आप सोचें, ये उन्होंने कहा कि तितली पे ये बात की है, किसी इंसेक्ट पे नहीं की। तो जैसा अकीदा होता है ना वैसे लगता है। तो वो ब्रदर जो थे, जब उन्होंने पूछा कि क्या ये वाकई सच है कि मरने वाली किसी रूह जो वो किसी जानवर या परिंदे की सूरत में, तो उन्होंने कहा देखो अगर वो तितली की सूरत में अब्बा जी आए थे तो तुमने रोका क्यों नहीं, कितनी बुरी बात है कि वो आए तो तुमने उनको जाने दिया। तुम उस तितली को वहां रखते, बाहर बाग में कोई उनके लिए फूल रखते, वो वहीं रहती, फिर रोज उसको मिलते, खाना देते, अब्बा जी को ऐसे क्यों जाने। और कहते वो आते और वो खाते भी हैं। सच बताएं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि इजा मात अल इंसान इन कते अमल हो, जब इंसान मरता है उसके तो नामे अमल खत्म, उसके हिस्से के लुकमे खत्म। हदीस में आता है कि मरने से पहले चार फरिश्ते मैयत के अपने करीब दिखते हैं और आपस में बातें करते हैं। कोई कहता है कि अल्लाह ने मुझे इसके खाने के लुकमे गिनने पर लगाया था, तो इसके तो खत्म हो गए हैं, तो फरिश्ते को नहीं पता ये मरने वाला है, लेकिन आपस में कहता है अभी क्या खाएगा। दूसरा कहता है हाँ पीने का भी इसका खत्म हुआ। तीसरा कहता है इसके तो कदम जो चलने थे वो खत्म हो गए हैं, इसके अमल खत्म। इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। तो कोई मरता ही नहीं जब तक अपने हिस्से का ना खा ले। अब वो तो खा के गए तो आप कहते नहीं मरने के बाद खिलाना है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदुवाना सोच है। वहां रूहें आती हैं, वो भटकती भी हैं, वो बदले भी लेती हैं। जो चला गया ये दुनिया से आखिरत वन वे है, दोबारा तो एक ही सूरत है, वो मरने के बाद और क्यामत के बाद होगी। अब क्या करें आप और मैं, जब ऐसे मौके आए तो अपने लोगों को बिजी करें। यकीन करें आएंगे ही नहीं। सुबह उठ के अगर आपको लगता है कि अभी लोगों ने आना शुरू हो जाना है, अब दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, साफ सुथरे कपड़े पहने बैठें, माहौल ऐसा बना लें, जो आ रहा है थोड़ी देर बैठ के मैयत के लिए दुआएं कर लें, बख्शिश की सारी करते जाएं, उसके बाद आप पूरे दिन का प्लान बना लें। जो लोगों को भी बता दें कि अगर आपने कल आना है तो इस वक्त से इस वक्त में हम इस मौजू पे एक लेक्चर सुनेंगे, हम इस वक्त में सूरत यासीन की तफसीर सुनेंगे। फिर इल्म की बात करूंगी मैं, कहती हूँ इससे गोल्डन चांस ही कोई नहीं है। दिल नरम हुए होते हैं, दिल टूटे होते हैं, आप प्लान बना के रखें। जब कोई ऐसा मौका इधर या पाकिस्तान आए, आप पूरा किसी सिस्टर को रखें, टेलीफोन है, छोटे छोटे स्पीकर्स मौजूद हैं, माहौल बना के आप उधर एक स्कूल शुरू कर दें। आप इसको एजुकेशन बनाएं। मुसलमान का हर मौका दावा का मौका है, लोगों ने आना है। और आप करके देखें, जब लोगों को बातों का मौका नहीं मिल रहा और रिश्ते नहीं जोड़ने और आगे विरासत क्या छोड़ गया और क्या पैसे छोड़ गया, अगले दिन आएंगे नहीं। आप उन्हें बताएं कि आज सारा दिन जहां ये होगा, सुबह में हम ये पढ़ेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर जो साथी होंगे बैठेंगे अगर जिसको आना है, शाम में हम ये आप पहले से खड़े होकर पहले दिन ऐलान कर दें कि कल से इसमें हम 3 दिन का एक कोर्स कर रहे हैं, उसमें हम सूरत वाकया करेंगे, 3 रुकू 3 दिन में करेंगे। कुछ तो करें, मौका ना जाने दें कि जिससे लोगों को एजुकेट ना करें, और दुआएं करें मैयत के लिए और अपने लिए इल्म हासिल करें। मुझे लगता है इससे बेस्ट प्लान कोई नहीं हो सकता। ठीक है, काफी है इतना। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए मुख्तसर सी दुआ करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। اللهم استر عوراتنا وامر رواتنا، اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لهيجنا وميجتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام اللهم لا تحرمنا اجره ولا تدلنا بعده اے اللہ ہمارے زندوں اور को भी माफ कर दे और मरने वालों को भी बख्श दे। अल्लाह हमारे छोटों को भी बख्श दे और बड़ों को भी बख्श दे। अल्लाह हमारे मर्दों को भी बख्श दे और हमारी औरतों को भी बख्श दे। अल्लाह जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको भी और जो मौजूद नहीं उनको भी बख्श दे। अल्लाह हम में से जिसे तू जिंदा रखे इसे ईमान के साथ जिंदा रखना और जिसे तू मौत दे उसे इस्लाम पर मौत देना। अल्लाह हमें मरने वालों के अजर से महरूम न रखना और इनके बाद हमें गुमराह न करना। ए अल्लाह हम सब पे अपना रहम फरमा। ए अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हम सब के अजीज़ व अकारिब में जो भी तेरे पास चला गया ईमान की हालत में उसको बख्श दे। में से जिसका जो अभी या पहले दुनिया से चला गया तुझे सब के नाम पता है अल्लाह उन सब को माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम वरहमहुम वाफ़िहिम वाफ़ु अन्हुम वक्रिम नुज़ुलहुम वबस्स मुदख़लहुम वाग़सिलहुम बिलमाई वस्सल्जी वलबरद ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دار خير من دارهم واهلا خير من اهلهم وزوجا خير من زوجهم وادخلهم الجنه وعصهم من عذاب القبر ومن عذاب النار। ए अल्लाह इन सब को बख्श दे और इन पर रहम फरमा। ए अल्लाह इनको आफियत दे और ए अल्लाह इनको माफ़ फरमा। ए अल्लाह उनकी बेहतरीन मेहमानी फरमा। ए अल्लाह इनकी कब्रों को कुशादा फरमा। ए अल्लाह इनको बर्फ पानी और ओलों से धो दे और ए अल्लाह इन्हें गुनाहों से इस तरह साफ कर दे जैसे तो सफ़ेद कपड़े को मैल कुचैल से साफ करता है। ए अल्लाह इनके घर वालों से बेहतर घर वाले अता फरमा। उनकी बीवियों से और उनके शोहरों से बेहतर घर वाले अता फरमा। उनको जन्नत में दाखिल फरमा और या अल्लाह कब्र के अजाब और आग के अजाब से बचा। ए अल्लाह तेरे बंदे तेरे पास चले गए या अल्लाह तेरा जो बंदा तेरे पास गया या अल्लाह उनको बख्श दे। اللهم عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك وانت غني ننزع به ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه। اے اللہ تیرا بندہ تیری بندی کا بیٹا تیری رحمت کا محتاج ہے۔ اے اللہ تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ اے اللہ اگر وہ نیک تھا تو اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرما اور اگر برائیوں پر تھا تو اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ میں زندگی کی دولت سے فائدہ اٹھانے والا بنا، اس کی قدر کی توفیق دے جو ہم نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ سارے عمل جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے دے۔ یا اللہ تو ہمارا رب، ہم تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ تو نہیں دے گا تو ہم کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ تو ہمیں ہمارے اپنے حال پہ رحم کرنے اللہ بنا دے۔ یا اللہ سب ساتھیوں کے دلوں میں جو خواہش ہے اس وقت بھی نہیں کہہ بتا سکتے، یا اللہ ان کی وہ بھی پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے جو ساتھی اس وقت بھی ہمارے ساتھ گھروں سے سن رہے ہیں یا جو کوئی بات میں سنیں گے، ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا بہترین سودا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو بھی کمی بیشی ہے معاف فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے پردے رکھ لے، آخرت میں بھی معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں، تیرے سے زیادہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ تو ہمارے اوپر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ہم اپنی کوشش سے تیرے سے ڈرتے ہیں، تیری بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے تو نے اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ لینا ہے۔ یا اللہ ہمیں سرکشیوں سے بچا اور یا اللہ تیری اس خوبصورت کتاب سے جڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو ساتھی یہاں بھی اور جہاں بھی دن رات کام کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی شان اپنے کمال کے ساتھ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کو بے حساب عطا فرما۔ وہ تو اپنی سی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے شان اور اپنے کرم کے ساتھ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ بچوں پہ اپنی رحمت فرما، شوہروں اور ان کے گھر والوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے شوہروں کے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما، ان کے بھائی بہنوں پہ اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ہم لمحہ لمحہ تیرے محتاج ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم تیری ہر خیر کے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو اس سکول پہ اپنی رحمت رکھنا، قیامت تک اس کو آباد رکھنا۔ یا اللہ یہ پودے لگانے والے اور ان کو پانی دینے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا۔ یا اللہ فوزیہ باجی کی بخشش کر دے۔ یا اللہ اگر وہ دو ایک دو سال ہمارے ساتھ جہاں نہ رہی ہوتی تو کبھی ہمیں ہر موقع پہ یاد نہ رہتی۔ یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو ان کے پیچھے لواحقین ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسے کام کرنے والا بنا کہ بعد میں ہم دعائیں لینے والے بن جائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.